तारा इतने भयानक सांप को देखकर उस पर तिलिस्मी कड़े से हमला कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस पर हमला कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति है। करिश्मा जी तारा परी पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन अमन उसके बचाव में आ खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है कि ये सब कुछ उन दोनों भाइयों ने मिलकर किया है, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। तब अमन अपनी माँ से आगे कहता है कि मैं तिलिस्मी पत्थर से अभी अमन को ठीक कर देता हूँ, लेकिन करिश्मा जी उसे बताती हैं कि तिलिस्मी पत्थर तिलिस्मी कड़े के वार को ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर अमन परेशान हो जाता है और अब वाकई उसे अपने भाई की जान की फ़िक्र होने लगती है। तब तारा परी करिश्मा जी को सोचने पर मजबूर करती है और कहती है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा, आप प्लीज़ सोचकर बताएं। तब करिश्मा जी रोते हुए बंगले के तहखाने के बारे में बताती हैं कि वहाँ तिलिस्मी कड़े की किताब मौजूद है, उसमें ज़रूर इसके वार को ख़त्म करने का रास्ता होगा। ये सुनकर अमन और तारापरी दोनों उस किताब को ढूंढने के लिए तहखाने की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो छिपकली अमित का इंतज़ार कर रही थी। वो कितने ही सालों से उस पेड़ के अंदर कैद थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि रज्जू अब वापस आ चुकी है, अब कोई उसके सामने नहीं टिक सकता था, वो जो चाहे वो कर सकती थी। लेकिन वो अमित को बताए बिना नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब अमित उसका मालिक था, उसने उसे छुड़ाया था। अमित रज्जू को एक कमरे में छोड़कर मल्लिका से मिलने के लिए चला गया था। अमित को भी लगा था कि कुछ ही देर में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मल्लिका के पास जाकर उसका बदला हुआ रूप देखकर चौंक गया था और जल्दी ही वो उससे प्यार करने लगा था। वहीं रज्जू, छिपकली, जो काफ़ी देर से अमित का इंतज़ार कर रही थी, वो काली शक्तियों के मालिक का इंतज़ार करते करते थक गई थी। लेकिन जब कितनी देर तक अमित नहीं आया, रज्जू अपने महल जैसे घर में अमित को खोजने के लिए निकल पड़ी और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसी के पास वाले कमरे से अमित की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमित की आवाज़ सुनकर रज्जू को लगा कि कहीं मालिक को किसी ने बंदी तो नहीं बना लिया या उसके मालिक की जान खतरे में तो नहीं। बस ये सोचकर वो उस कमरे के अंदर जाने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन उसे कहीं भी उस कमरे में अंदर जाने का रास्ता नज़र नहीं आया। तभी उसने कुछ मंत्र खुद पर फूंका और जहां वो एक बहुत बड़ी छिपकली थी, वहीं अब वो नॉर्मल छिपकली के रूप में आ गई। वो केवल इतनी छोटी सी छिपकली बन गई थी जितनी नॉर्मल लोगों के घरों में रहती हैं। अपना रूप बेहद छोटा करने के बाद रज्जू ने उस कमरे के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा और जल्दी ही उसे एक छोटा सा आला टाइप का कुछ दिखा और वो उसके अंदर चली गई। रज्जू जिस छेद के द्वारा अंदर गई थी वो उस कमरे का बाथरूम था। वो दीवार पर ही चिपकी हुई थी। दीवार पर वो छिपकली इस तरह से चल रही थी मानो ये उसी का घर हो। रज्जू ने जिस तरह से उस कमरे में प्रवेश किया था वो उस कमरे का बाथरूम था। सो रज्जू अपने असली यानी इंसानी रूप में आ गई थी और उस बाथरूम से बाहर निकलने लगी थी। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने पड़े किंग साइज के बेड की ओर देखा तो वो हैरान रह गई थी। उसने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की मालिक के साथ प्यार कर रही थी और उन दोनों के मुंह से प्यार भरी आवाज़ें आ रही थीं। रज्जू बेहद हैरान रह गई थी, कितनी सदियों के बाद उसने ऐसा कुछ देखा था। रज्जू उन दोनों को देख अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रज्जू कितने ही सालों से उस पेड़ पर कैद थी, लेकिन अमन ने अपनी कुछ शक्तियों का त्याग करके उस छिपकली को आज़ाद करा दिया था और अब उन दोनों को इसी हालत में देखकर उसके अंदर भी प्यार करने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। वो ज़्यादा देर उन दोनों को नहीं देख पाई थी और इससे पहले कि अमित या मल्लिका उसे देखते, वो जिस रास्ते से वो उस कमरे में गई थी उसी रास्ते से वो बाहर निकल आई थी और उसी कमरे में जाकर अमित का इंतज़ार करने लगी थी जिस कमरे में अमित उसे छोड़कर गया था। सब कुछ रह रहकर मल्लिका की याद आने लगा था और वो वहीं खड़ी हुई अपने मालिक के काम पूरा होने का इंतज़ार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर तारा और अमन तहखाने में चले जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक दो किताबें नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी थी, या यूं कहो किताबों का पूरा भंडार था वहाँ पर। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। तब अमन ने तारा को देखते हुए कहा था, हमें जल्द से जल्द वो किताब ढूंढनी होगी जिसमें इस कड़े का रहस्य मौजूद है। तब अमन जल्दी से कभी एक पोर्शन में किताब ढूंढता तो कभी दूसरे पोर्शन में, लेकिन उसे नाकामी ही हाथ लग रही थी। तब अमन ने देखा तारा तो कहीं भी किताब नहीं ढूंढ रही थी, वो तो केवल एक जगह खड़ी हुई थी। अमन को नहीं जाने उसे इतने आराम से खड़ा हुआ देखकर बुरा लग रहा था और वो उसके पास जा पहुंचा था और थोड़े तल्ख लहजे में बोला था, अगर आपको वो किताब ढूंढने में मेरी मदद नहीं करनी थी तो फिर आप आई क्यों मेरे साथ। तब तारा परी थोड़ा चिढ़कर बोली थी, देखिए अमन सर, मैं आप लोगों की तरह कोई भूत जिन या चुड़ैल तो हो नहीं कि कुछ भी बिना सोचे समझे कर दूं। मैं एक इंसान हूं और इंसानों के पास एक बड़ी जादुई शक्ति तो नहीं होती, लेकिन उनके पास एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ होती है जिसे दिमाग कहते हैं। सो मैं जो कुछ भी करती हूँ वो अपने दिमाग से सोचकर करती हूँ, समझे आप? आपकी तरह नहीं जो बिना कुछ सोचे समझे केवल सामने वाले का सच जानने के लिए अपने ही भाई को सांप बनाकर बेड पर लिटा दे। तारा परी ने अमन पर रूखे लहजे में तंज किया था। अमन की उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ गया था और उसने तारा परी को उसके कंधों से पकड़ा और जहां एक साथ ढेरों बुक रखी हुई थी उस पर लगा दिया था। और जैसे ही किताबों वाली रैक पर जोर पड़ा, एक एक करके सारी बुक्स नीचे गिरने लगी थी, लेकिन अमन ने इस चीज की कोई परवाह नहीं की थी और वो तारा परी को अपने बेहद करीब करते हुए बोला था, श, मेरा पहले से ही बेहद मूड खराब है और तुम ये तंज करके मुझे और गुस्सा दिला रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और जिस तरह से तुमने उस दानव को तिलिस्मी पत्थर से मारने के लिए बोला तो मुझे लगा कि कहीं तुम भी तो कोई जिन या चुड़ैल आत्मा तो नहीं हो जो उस पत्थर की तलाश में मेरी जिंदगी में आई हो। अमन की बात सुनकर तारापरी ने थोड़ा सा करते हुए कहा था, ओ अच्छा, मैंने अगर आपको इस दानव को मारने के लिए उस पत्थर का प्रयोग करने का कहा तो आपकी नजरों में मैं कोई चुड़ैल हो गई। वाओ, मैंने आपसे कहा ना, मैं जो भी काम करती हूँ वो अपने दिमाग से सोचकर करती हूँ। उस वक्त उस दानव से ना तो करिश्मा जी लड़ पा रही थी और ना ही आप दोनों भाई उसका मुकाबला कर पा रहे थे, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि शायद तिलिस्मी पत्थर की जादुई शक्ति ही इस दानव को रोक सकती है, इसलिए मैंने वो सब बोला था। और हुआ भी यही था, वो दानव तिलिस्मी पत्थर से ही मरा था। पर लगता है मेरा आइडिया आपको कुछ ज्यादा रास नहीं आया और आपने मुझे ही गलत समझ लिया। तब अमन ने कहा, मैं सिर्फ अपना शक दूर कर रहा था और कुछ नहीं, समझी तुम? और इससे पहले कि तारापरी अमन को कुछ जवाब देती, उसके हाथ में पहना कड़ा चमकने लगा था। तारापरी कड़े को देखकर चौंक गई और अमन की ओर इशारा करने लगी थी, क्योंकि अमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। अमन ने उसके इशारे का कुछ और ही मतलब ले लिया। उसे लगा तारा चाहती है कि मैं उसे किस करूं, और वो ये सोचकर अपने होंठ उसके करीब ले जाने लगा था।
तारापरी ने उसकी हरकत देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली थीं और वो एकदम से अमन को पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ आपका भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और आपको चुम्मी की पड़ी है, तारा तिलमिलाकर बोली। तब अमन बोला, लेकिन तुमने ही तो इशारा किया किस करने का। तब तारा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, मैंने आपको अपना कड़ा दिखाने के लिए इशारा किया था, ना कि किस करने के लिए। अमन तारापरी की बातें सुनकर झेप गया था और वो कहने लगा, कड़ा कहाँ है, कड़ा दिखाओ। तब तारा ने देखा कि वो कड़ा अब नहीं चमक रहा था। अमन ने कहा, इसमें दिखाने वाली कौन सी बात थी, ये तो नॉर्मल ही है। तब तारापरी बोली, नहीं नहीं, ये चमक रहा था, इसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जब आपने मेरा हाथ वहां पकड़ रखा था। ऐसा कहकर तारापरी फिर से उसी जगह जाकर खड़ी हो गई थीं और वो ये देखकर हैरान रह गई थीं कि वाकई ये कड़ा तो चमक रहा था। तब अमन कुछ सोचकर जहां वो कड़ा चमक रहा था उस पोर्शन में किताब खोजने लगा था और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। जल्दी ही तिलिस्मी कड़े की किताब रखी हुई दिखाई दे रही थी। उस किताब पर सुनहरे अक्षर से लिखा हुआ था, तिलिस्मी कड़े की किताब। उस रहस्यमय किताब को देखकर अमन खुश हो गया था और वो जैसे ही उस किताब को छूने के लिए आगे बढ़ा, उसमें से जोरदार रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी और उससे अमन को बहुत भयानक जानलेवा करंट लगा था और वो दूर जा गिरा था।